दृष्टि प्रकाश पृष्ठ संख्या 101 शुरू से ले लेंगे, थोड़ा चला है शुरू से ले लेंगे। वस्तु त्रिकाली है, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय होती है। अपना जो स्वरूप मूल स्वरूप है, शुद्धात्म तत्व है, उसके आश्रय से पर्याय निर्मल होती है। पर्याय का निर्मल होने का यही एकमात्र कारण है। दूसरा कोई भी प्रकार से पर्याय की निर्मलता हो सकती नहीं। दूसरे पदार्थ के आश्रय से तो पर्याय मलिन होती है, लेकिन अपनी पर्याय के आश्रय से भी पर्याय निर्मल नहीं हो सकते। ये तो पर्याय दृष्टि को ही पर्याय आश्रित परिणमन होता है, सम्यक दृष्टि को तो पर्याय आश्रित परिणमन होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य का आश्रय होने से तो सम्यक दृष्टि हुआ है, और उनकी पर्याय निर्मल हुई तो निर्मल पर्याय का आश्रय भी सम्यक दृष्टि नहीं करता। मिथ्या दृष्टि ही अपने पर्याय का आश्रय करके मिथ्यात्व भाव रूप परिणमता है। इसमें क्या है कि जो वर्तमान पर्याय प्रकट होती है उसमें अहमपणा रहता है या होता है, उसमें अहमपणा रहता है या होता है, यही पर्याय का आश्रय है। अपनी चलती पर्याय में अहम बुद्धि होती है, यही पर्याय का आश्रय है, और वो ऐसे पर्याय दृष्टि बनी रहती है जो जीव के जीव का अविवेक है, क्योंकि महानता तो द्रव्य की है। उसको छोड़कर और अस्तित्व भी मूल तत्व में है, उसको छोड़कर क्षणिक भाव में अहमपणा करता है तो क्षणिक भाव तो विलीन हो जाता है, वो तो चलित भाव है। अहमपणा होता है, हाँ, जैसे मेरा क्षयोपशम बहुत तगड़ा है, मुझे बहुत अच्छा बढ़िया राग आया, भगवान की भक्ति का राग मैंने बहुत अच्छा, मेरा जैसा किसी को भक्ति का भाव नहीं आता है, तो ऐसा जो अहमपणा होता है वर्तमान अवस्था में, चाहे राग की हो चाहे क्षोभसम की हो, उसमें अहम बुद्धि होती कि नहीं। जैसे कि क्षोभसम का अभिमान है वो क्या है, हाँ, वो पर्याय का ही आश्रय है, अपने पर्याय का ही आश्रय है। इसमें वो जीव की मुंडता है, तो प्रवचन सार में वो बात लिया, पर्याय मुंडाहा परसमया, पर्याय मुंड को परसमय कहते हैं, उसको जैन मत में स्वीकार नहीं किया भगवान ने, जिनेन्द्र देव ने अपने स्वमत में उसको स्वीकार नहीं किया। नहीं, पर्याय पराधीन नहीं हुई, पर्याय स्वाधीन हुई। स्वाधीन कैसे, कि जो द्रव्य है वो स्व है, क्या द्रव है वही स्वस्वरूप है, तो स्वस्वरूप में स्वपणा होना वो सम्यक है, और स्वस्वरूप में स्वपणा नहीं होना वही असम्यक है। ऐसी बात है, सीधी सादी बात है। वो तो
बोले परमात्मा पर्याय सितम है,
हाँ
तो वो पर्याय की आपके सुधी जी की बात नहीं है, सरल
फरमाया
पराधीन हो
जाएगी। द्रव्य का मुख जो पर तरफ था वो स्व तरफ आया, लेकिन वो आया वो भी स्वतंत्र रूप से आया, क्या वो भी स्वतंत्र रूप से आया। द्रव्य तो कुछ करता नहीं, किसी को अधीन करना अधीन नहीं करना, द्रव्य का तो कुछ करने का है ही नहीं, जो कुछ होता है वो तो पर्याय में होता है और वो स्वयं होता है, स्वाधीन रूप से होता है, पराधीन रूप से नहीं होता है। परतंत्रता भी स्वाधीन रूप से करती है पर्याय, पर का आश्रय भी स्वाधीन रूप से करती है और स्व का आश्रय भी स्वाधीन रूप से ही करती है। फिर भी स्वतंत्र है। अब कहते हैं कि गुरु के वचन प्रति लक्ष्य जाता है तब तक निमित्त शास्त्र गुरु और ज्ञान सब विनाशी। क्या गुरु के वचन प्रति लक्ष्य जाता है तो निमित्त प्रति लक्ष्य गया, वो शास्त्र प्रति लक्ष्य गया तो वो ज्ञान है वो विनाशी ज्ञान है। विनाशी मैंने क्या है कि उसमें अपनत्व करता है तो वो पर्याय तो नाश हो जाएगी, तो अपना उसमें भाव मरण होता है, विनाश का अनुभव होता है, मरण का अनुभव होता है। लेकिन ध्रुव की ओर नजर लगे तब ज्ञान अविनाशी होता है, उत्पाद भी तो रहता है लेकिन मैं ध्रुव हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ तो उसमें भाव मरण नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि अविनाशी रूप से जीवंत रहता है। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अविनाशी हो गया वो जीवंत रहता है, अनंत काल तक वो जीवित रहता है, उसका मरण कभी होता नहीं, क्योंकि ध्रुव तत्व में अपनत्व किया इसलिए उनको अपना विनाश का अनुभव होता ही नहीं। जिसको होता है वो मिथ्या अनुभव होता है लेकिन दुख तो मरण तुल्य होता है उसमें। अनुभव और सम्यक दर्शन अवस्था है, ये दोनों अवस्था है, अनुभव भी अवस्था है और सम्यक दर्शन भी अवस्था है। उसको मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय को और आत्मा को त्रिकालीय संबंध नहीं है, वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, हैं? हाँ, जो आत्मा त्रिकाली है उनको तो पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रमाण का द्रव्य की अपेक्षा से उसका क्षणिक संबंध है, कथनचित अभिन्न है लेकिन कथनचित भिन्न है, और त्रिकाली की अपेक्षा से देखो तो सर्वथा भिन्न है, दोनों अपेक्षा लागू पड़ती है। प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, और निश्चय से देखो तो सर्वथा भिन्न है। क्या एक वो श्रद्धा तो विषय करती नहीं इसलिए सर्वथा भिन्न है, लेकिन प्रमाण की अपेक्षा से उसी द्रव्य का एक अंश होने से कथनचित अभिन्न भी है, तो कथनचित अभिन्न है तो उसको गौण करो। प्रमाण ज्ञान तो अपना अंश जानेगा, पर्याय को अपना अंश जानेगा ना प्रमाण ज्ञान, तो भी उसको गौण करो, उसको मुख्य नहीं करो।
प्रमाण की अपेक्षा से
हाँ, प्रमाण की अपेक्षा से पर्याय अपना अंश है लेकिन मुख्य करने लायक तो नहीं है, गौण करने लायक है। कितना फर्क है कि जैसे परमाणु है दूसरा जीव है वो सर्वथा भिन्न है, उसी प्रकार तो पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है। सर्वथा भिन्न कहते हैं कि क्या है कि वो अनित्य है और त्रिकाली है वो नित्य है, इसलिए नित्य अनित्य का कोई मेल बैठता नहीं है। फिर भी एक पदार्थ का दो अंग है और अविरोध रूप से एक पदार्थ में रहता भी है ऐसा। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पर्याय को और आत्मा को त्रिकाली संबंध नहीं है, कथनचित अभिन्नता का क्षणिक संबंध है, क्योंकि वह अवस्था बदल जाती है और आत्मा यूं का यूं रह जाता है। अवस्था बदल जाती है लेकिन पूरा आत्मा बदलता नहीं, आत्मा तो वो का वो रह जाता है। दर्शन निमित्त का स्वीकार नहीं करता है। क्या दर्शन है सो निमित्त का स्वीकार नहीं करता है। श्रद्धा दर्शन, मैंने यहाँ श्रद्धा लेना, दर्शन उपयोग नहीं लेना। श्रद्धा है वो निमित्त का स्वीकार नहीं करती, परंतु बाद में उपचार से निमित्त कहने में आता है। सम्यक दर्शन होने के बाद जो प्रमाण ज्ञान होता है उसमें अपनी पर्याय में कैसा कैसा निमित्त है देवगुरु शास्त्र आदि, वो बाद में कहने में आता है। पीछे से ज्ञान निमित्त को जानता है, सम्यक दर्शन होने के बाद जो ज्ञान प्रमाण हुआ वो निमित्त को जान लेता है। दर्शन के समय निमित्त नहीं है, पीछे से निमित्त कहलाया, क्योंकि दर्शन तो विषय ही नहीं करता निमित्त को, स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए दर्शन के अपेक्षा से तो निमित्त कहने में नहीं आया। ज्ञान ने जाना पर पदार्थ को तो निमित्त कहा बाद में। हाँ, फिर भी जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान कहने में आता है। इसके पहला वही ज्ञान था वो सम्यक नहीं था, वो ज्ञान सम्यक नहीं था, वो था सम्यक विशेषण लागू नहीं पड़ता था। तो दर्शन वो श्रद्धान की प्रधानता है, ज्ञान में जो सम्यक पणा है उसमें दर्शन की प्रधानता है। ये श्रद्धान का रूप है, क्या ये ज्ञान को, ज्ञान का जो सम्यक्त्व है वो श्रद्धान का रूप है, इसलिए उनको बाद में कहा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में श्रद्धा की प्रधानता है। हाँ, ज्ञान में श्रद्धा का रूप है, ज्ञान में चारित्र का रूप है, आनंद का रूप है, सुख का रूप है, पुरुषार्थ का रूप है, सब है, बहुत गुणों का रूप है। निमित्त को राग से जानता है तब तक ज्ञान विनाशी और अनित्य है, यानी निमित्त प्रति जहाँ तक राग रखता है जीव, निमित्त को इष्ट जानता है, उपादेय जानता है, वहाँ तक उसका ज्ञान विनाशी है, उसका ज्ञान में भाव मरण रहेगा। वह विनाशी ज्ञान अविनाशी को लाभ करता नहीं, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है वो अपना आत्मा को लाभदायक नहीं है, लाभकारक नहीं है।
दर्शन के समय निमित्त नहीं
है, दर्शन के समय निमित्त नहीं है तो क्या है कि दर्शन तो स्वीकार ही नहीं करता ना दूसरा का, तो निमित्त कैसे कहेंगे। दर्शन के समय देखो तो निर्विकल्प श्रद्धा स्वरूप को ग्रहण कर लेती है, उसको निमित्त विमित का कोई बात लागू पड़ता नहीं है ऐसा। ज्ञान में तो जानने का होता है, इसलिए निमित्त कहते हैं। तो जारे निमित्त ने जाने से त्यारे, इसलिए बाद में शू से पछी थे ने विचार आए, सविकल्प दशा में विचार आता है कि मैं तो मेरा स्वरूप से बिल्कुल अनजाना था, अनभिज्ञ था, ऐसे गुरु मिले तो मुझे स्वरूप ज्ञान हुआ तो गुरु गुरु पर निमित्त का आरोप आता है, वो बाद में आता है, ऐसा ऐसा विचार भी बाद में आता है। तो उनको पता तो चला कि मैं तो मेरे स्वरूप को जानने के लिए बहुत उत्सुक था, मेरी जिज्ञासा भी बहुत थी, लेकिन अपने आप में मेरे स्वरूप को जान सका नहीं। जब गुरु ने दर्शाया तब मुझे जानने में आया। तो गुरुदेव गुरु का निमित्तपना जो है वो अपना ज्ञान होने से बाद में पता चल जाता है कि निमित्तपना कैसे बना, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बना, वो बाद में पता चलता है, ज्ञान होने के बाद पता चलता है ऐसे। वो विनाशी ज्ञान अविनाशी को लाभ करता नहीं, मैंने मिथ्या ज्ञान आत्मा को लाभ नहीं करता। वह तो पूर्व का ही उघाड़ है, पूर्व का मैंने ऐसा जैसे कोई प्रारब्ध का योग होता है वैसे क्षोभ का भी मिथ्यात्व अवस्था में योग होता है, वो पूर्व का ऐसा कर्म लेकर के आया है ज्ञानावरणी का। तो अपने काल में जैसा भी उघाड़ हो ऐसा सहज हो जाता है, कितना भी जीव पाप करता है तो भी उघाड़ बढ़ता है। जैसे दुनिया के दुनियादारी के बहुत से विषय हैं उघाड़ वाले होते हैं बहुत। लेकिन वो पूर्व का ही उघाड़ है, पूर्व का मैंने ऐसे पूर्व कर्म ऐसा निबंधन किया है, तो जिस समय में जैसा उघाड़ होने वाला है बिना प्रयत्न हो जाता है। खुद ने ही जब स्वयं की ओर ढलकर निर्णय किया तब निमित्त कहने में आता है। तो मूल में कार्य तो अपना होता है, लेकिन वो कार्य कैसे करना इस दर्शाने वाले को निमित्त कहने में आया। तो ढलकर निर्णय किया तब, जहां तक भीतर में ढला नहीं वहां तक वो निमित्त लागू पड़ता नहीं है। देव गुरु शास्त्र निमित्त है, लेकिन कब, कि नैमित्तिक अवस्था स्वयं पैदा करे तब। जब नैमित्तिक अवस्था उत्पन्न नहीं करे उसके बोध के अनुसार, तो फिर निमित्त किस चीज का, किस पर्याय का निमित्त? क्या मिथ्यात्व में देव गुरु शास्त्र निमित्त हो सकते हैं क्या? अज्ञान में देवगुरु शास्त्र निमित्त होता है क्या? कि नहीं, गुरु निमित्त है, गुरु दर्शाने वाले हैं इसलिए गुरु को निमित्त कहने में आता है, उसकी कृपा बोलने में आता है, ऐसा सब कहने में आता है। काम तो खुद ढलता है तब निमित्त कहने में आता है, तो निमित्त कहने में नहीं आता। काम नहीं हुआ तो निमित्तपना लागू नहीं पड़ता क्योंकि मिथ्यात्व में तो वो निमित्त होने का निमित्तत्व भी उसमें नहीं है, उसमें तो धर्म में सम्यक्त्व में निमित्त होने की योग्यता है, मिथ्यात्व कराने की योग्यता उसमें है ही नहीं, उस प्रकार का निमित्तत्व ही नहीं है वहां। निमित्तपना भी एक धर्म है, दूसरे में दूसरे के कार्य में निमित्त रूप होना एक धर्म है, गुण नहीं है लेकिन धर्म है। तो देवगुरु शास्त्र में दूसरों के कल्याण का निमित्तत्व है, दूसरों का अकल्याण का निमित्तत्व नहीं है, ऐसी बात है। नहीं कल्याण हुआ उसमें निमित्त, सूक्ष्म बड़ा वो नहीं, वो तो पूर्व कर्म का निमित्त है, उसमें स्त्री गुरु निमित्त नहीं है। खुद ने ही जब स्वयं की ओर ढलकर निर्णय किया तब निमित्त कहने में आता है। जिस काल में अविनाशी ज्ञान होता है, मैंने अविनाशी तत्व के साथ ऐसा सदृश ज्ञान होता है, उस काल में का सवाल मैंने प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त तो अंदर में ढल गया है। बाद में वो विचार करते हैं कि मेरे अनुकूल कौन थे, ऐसे कहने वाले कौन थे, ऐसे बताने वाले कौन थे। जब अंदर ढल गया तो संबंध ही नहीं रहा। जैसे समोल शरण है, भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है और किसी जीव को निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है तो अंदर में लीन हो जाता है। तो जब लीन होता है उस वक्त तो वाणी को सुन नहीं सकता, और जिस वक्त वाणी को सुनता है उस वक्त अंदर में लीन हो नहीं सकता। तो जब ज्ञान अंदर में लीन हुआ, उपयोग अंदर में लीन हुआ, तो कोई संबंध रहा नहीं, निमित्त संबंध। उस वक्त निमित्त कोई नहीं, निमित्त का संबंध उस वक्त नहीं है। वो दर्शन के काल में निमित्त नहीं, ऐसे ज्ञान के काल में ले लिया, निर्विकल्प ज्ञान के काल में। जिस काल में अविनाशी ज्ञान होता है उस काल में निमित्त का सवाल मैंने प्रश्न ही नहीं रहता। निर्णय सामान्य के प्रति ढल गया, तत्काल संसार छूट गया। संसार रहित, मोह रहित जो तत्व है, अविकारी तत्व है, संपूर्णतया अविकारी तत्व है, इसका अनुभव हुआ तो संसार छूट गया। क्योंकि भीतर में तो संसार भाव है ही नहीं, न संसार का कोई भाव है, न कोई संसार का कारण भी है, कारण कार्य कुछ उसमें नहीं है, तो उसको संसार नहीं है, उसका संसार छूट गया। जैसे अपने घर में से निधान निकला तो उस वक्त ही दरिद्रता छूट गई, उस वक्त ही श्रीमंत हो गया। वो भले कपड़ा फटा हुआ है, क्या कपड़े में कोई ठिकाना नहीं है, मैला है, फटा हुआ है, लेकिन अपनी निधि अपने घर में देखी तो उस वक्त उसका दरिद्रपना छूट गया। ऐसे संसार रहित, मोह रहित अपना तत्व देखने से, अपना स्वरूप देखने से उसको संसार नहीं रहा, संसार छूट गया उसका। हैं? क्या नया तो है ही नहीं उनको, पुराना पुराना से भिन्नता हो गई। पुराना से भिन्नता, जो संचित कर्म है उससे भिन्नता हो गई कि ये कर्म मेरे साथ बंधे हुए नहीं है। मैं तो अबद्ध स्पष्ट हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाल मुक्त हूँ। मुक्त भी क्या कहना, बंधन वाले को मुक्त कहेंगे, मैं तो बंधा ही हुआ ही नहीं था, मुक्त भी क्या कहना। ऐसा निर्णय ज्ञान का पर्याय है ना, निर्णय भी पर्याय तो ज्ञान का ही है ना। तो चालू ज्ञान का पर्याय नहीं लिया, निर्णय का पर्याय लिया, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा प्रतीति सहित ज्ञान। निर्णय को क्या कहेंगे, प्रतीति वाला ज्ञान उसको निर्णय कहेंगे। हाँ, अच्छा, ये तो अनुवाद के, अनुवाद के सामान्य मैंने त्रिकाली स्वभाव, सामान्य मैंने वहाँ अपना स्वभाव, उसको सामान्य कहते हैं। निर्णय सामान्य के प्रति मैंने त्रिकाली स्वरूप के प्रति ढल गया, मैंने अंतर्मुख हो गया, तो अंतर्मुख हो जाने से अपना स्वरूप का अनुभव हुआ। तो वो स्वरूप कैसा था कि जिसमें संसार और संसार का कोई कारण नहीं है, ऐसा स्वरूप है। तो क्या अनुभव हुआ कि मैं तो संसार रही हूँ, मेरा संसार है ही नहीं, अनंत भव मेरे नहीं हुए थे और वर्तमान भव भी ये जो चालू है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ऐसा हुई नहीं, ये मेरा भव है ही नहीं, मैं तो जो हूँ सो त्रिकाल, जैसा हूँ वैसा, ऐसा अनुभव होता है। तो उसका संसार छूट गया। कब छूट गया? उसी वक्त छूट गया, तत्काल छूट गया। संसार छूटने में कोई देर लगी नहीं। संसार छूटने का कारण द्रव्य स्वयं है। ऐसा संसार छूटने का कारण क्या है कि द्रव्य स्वयं है, द्रव्य ही ऐसा है, द्रव्य ही ऐसा है कि संसार छूट जाए, संसार रह ही नहीं सके, ऐसा द्रव्य है। तो संसार छूटने का कारण द्रव्य स्वयं है। निर्णय होने के बाद निमित्त कहने में आता है, बाद में निमित्त कहने में आता है। ध्रुव शक्ति साध्य है, मोक्ष साध्य नहीं है। साध्य मैंने अवलंबन का विषय, क्या ध्येय का विषय, ध्यान का विषय। तो जो ध्रुव शक्ति है वो अवलंबन करने लायक है, मोक्ष के पर्याय अवलंबन करने लायक नहीं है। ऐसा गुजराती में साध्य शब्द अच्छा ना, ठीक है। ध्रुव शक्ति साध्य है, मोक्ष साध्य नहीं है। मोक्ष प्रकट होता है, वो तो प्रकट होने वाले पर्याय है, वो अवलंबन का विषय नहीं होता। ध्यान का ध्येय तो ध्रुव शक्ति है, ध्यान का ध्येय तो ध्रुव शक्ति है, ध्यान का ध्येय मोक्ष पर्याय नहीं है। वो तो नहीं प्रकट होगी, वो तो उपस्थित है ही नहीं, किसका ध्यान करे? जो है ही नहीं उसका ध्यान कैसे करे? मोक्ष तो प्रकट होता है, और प्रकट अप्रकट पर्याय दृष्टि में होता है। ध्रुव तो नित्य प्रकट है, क्या प्रकट और अप्रकट तो पर्याय धर्म है, वो त्रिकाली का धर्म नहीं है। ध्रुव तो नित्य है, प्रकट कहो अप्रकट को उसको विशेषण वास्तव में लागू नहीं होता है, लेकिन है इसलिए कहते हैं कि प्रकट है, लेकिन नित्य प्रकट है, नया प्रकट होता नहीं। प्रकट अप्रकट पर्याय दृष्टि में होता है, यानी पर्याय में होता है। ध्रुव नित्य प्रकट है। ध्रुव में तो प्रकट अप्रकट वस्तु में तो सवाल ही नहीं। ध्रुव नित्य प्रकट है, फिर भी कहा कि प्रकट अप्रकट वस्तु में सवाल ही नहीं, वस्तु में कोई सवाल नहीं आता। वो प्रकट अप्रकट धर्म उसको लागू नहीं पड़ता। त्रिकाली को प्रकटता और अप्रकटता का धर्म का अपेक्षा लागू नहीं पड़ता, वो अपेक्षा उनको नहीं लागू पड़ती। प्रकट अप्रकट अवस्था में है वस्तु, ध्रुव तो नित्य प्रकट ही है, वो प्रकट कहने में आती है, लेकिन वास्तव में तो कोई लागू नहीं पड़ता। साध्य वस्तु और साधन निर्णय, निर्णय में व्यवहार, क्या साध्य वस्तु इतने वो निश्चय वस्तु, और पर्याय है वो व्यवहार है। वस्तु है सो निश्चय है, और इसकी शुद्ध पर्याय है वो व्यवहार, ये शुद्ध व्यवहार है, क्या ये शुद्ध व्यवहार है, है? निश्चय उपादेय है, व्यवहार उपादेय नहीं है। व्यवहार को कहाँ उपादेय कहे, शुद्ध व्यवहार है, लेकिन व्यवहार में व्यवहार को पर्याय को ध्रुव उपादेय है, अपनी पर्याय पर्याय को उपादेय नहीं करते। ऐसा साधन निर्णय एम लीधु, साधन ज्ञान लीधु से गुजराती में शू कर, इसके पहला
निर्णय
साधन, निर्णय साधन, साधन निर्णय न बदले निर्णय साधन है, निर्णय એટલે व्यवहार साधन। साध्य साधन एम के ने साध्य साधन, साध्य वस्तु साध्य निश्चय और साधन है वो व्यवहार। ध्रुव लक्ष्य में आने पर सहज निर्मल अवस्था प्रकटती है, ध्रुव का लक्ष्य होने से निर्मल अवस्था सहज प्रकटती है। इसलिए आत्म सिद्धि में कहा कि लक्ष्य थवाने कारणे कया शास्त्र सुखदाय। निर्णय साधन लक्ष्य थाय छे। हाँ, तो ध्रुव में लक्ष्य आने पर सहज निर्मल अवस्था प्रकट हो जाती है। पुरुषार्थ करना पड़ता नहीं, सहज पुरुषार्थ हो जाता है। देखिए वो पहला आत्मधर्म में आया है, बात पहले साल में आया है आत्मधर्म के, सहज पुरुषार्थ हो जाता है। वो जो चौथा कलश में लिया, करोड़ उपाय करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ये कर्तृत्व वाली बात है, कर्तृत्व वाली बात है कि अन्यथा करोड़ उपाय करो ने वो अन्यथा है। सहज पुरुषार्थ तो हो जाता है, वो करना पड़ता नहीं है। आश्रय पर्याय का कैसा, क्या सामने से प्रश्न उठ रहे, पर्याय का आश्रय कैसा, पर्याय का आश्रय ऐसा कहते हैं कोई पर्याय का आश्रय, वो कोई आश्रय करने लायक भाव है कोई, जो टिकती नहीं है जो रहती नहीं है उसका आश्रय कैसे करना, वो करने लायक है कोई, उसका आश्रय तो करने लायक है ही नहीं। जो चलित है उसका आश्रय कैसे करेंगे, आश्रय पर्याय का कैसा, आश्रय स्वभाव का, आश्रय तो स्वभाव का है, आश्रय करने लायक तो स्वभाव है। ध्रुव और मोक्ष दोनों साध्य होने पर तो दो भंग पड़ जाए, क्या अवलंबन लेने में एक ही रहता है ध्रुव, मोक्ष का अवलंबन लेने से भंग पड़ता है ऐसा कहते हैं, क्या, क्योंकि एक द्रव्य है एक पर्याय है, तो दो भंग पड़ जाए। दर्शन का विषय भंग नहीं है, दर्शन अभंग का विषय, दर्शन अभंग को विषय करता है, भंग को विषय नहीं करता है। हाँ, कहीं नहीं, कहीं नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग, श्रीमद जी ने पद बनाया ना, मैंने इस काल में भी ऐसे कोई मनुष्य हुए, ऐसे कोई नर मैंने महात्मा हुए जिन्होंने अपने अभंग स्वरूप को देखा है। अभी इस काल में अनुभव नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, अनुभव करके बात किया है कि ऐसे कई नर है कई मनुष्य है जो इस काल में भी अनुभव करता है। ये लोग तो कहते हैं ना, बारहवें गुण स्थान में अनुभव होता है, सातवें गुण स्थान में होता है, हाँ विद्यासागर जी वो कहते हैं बारहवें गुण स्थान में कहते हैं, हाँ निर्विकल्प 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 अनुभव अनुभूति वार में होती है, और अभी जो मुनिपणा है वो छठा तक का है, सातवां आता अभी, अभी के काल में इस काल में सातवां नहीं आता, ऐसा सब चलता है,
दोनों जोड़का है साथ में छठा
तक। हाँ, अभी वो तो चतुर्थ काल में या पुराने काल में ऐसा मुनि थे, ऐसे मुनि थे, अब ऐसा मुनि संभव नहीं है, क्या अब ऐसे मुनि संभव नहीं है, लेकिन पंचम राम महाव्रत जो पाले तो उसको मुनि कहना चाहिए, ये चलता है सब।
है
चौथे काल का मुनि कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि अनुभूति तो बारहवे में है। मिथ्यात्व जैसा कोई अनंत संसार का कारण ही नहीं। क्या मिथ्यात्व जैसा अनंत संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है, तो कोई बिल्कुल बंद का कारण नहीं है। देखो बंद हेतु भाव, उसको तो बंद हेतु कहा है, चलता है। गुरुदेव कहते ना, क्या करे इस काल में भगवान तो रहे नहीं। तो सब सबकी सब चलाते हैं, फिर कोई कहने वाले टोकने वाले तो कोई है नहीं। सर्वज्ञ हुए तो मानना पड़े, ये तीर्थंकर देव विराजमान है वो तो ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं चले। दर्शन का विषय भंग नहीं है, सम्यक दर्शन व केवल ज्ञान खुल जाए सो निश्चय से आदरणीय नहीं है। सम्यक दर्शन भी नहीं है और केवल ज्ञान भी नहीं, वो व्यवहार उपादेय नहीं, दोनों व्यवहार है, दोनों उपादेय नहीं हो सकता। देखो ये इस साल में आया है, 2000 के साल में है कि सम्यक दर्शन व केवल ज्ञान तो निश्चय से आदरणीय नहीं है। आया कि नहीं आया उन दिनों में? साध्य साधन का भेद निश्चय में है ही नहीं, त्रिकाली में तो साध्य साधन का भेद है ही नहीं, निश्चय तो अभेद अभेदंग है। भेद का जोर आवे तो अभेद पर जोर नहीं जाता, इसलिए भेद जानने लायक है, उस पर जोर कभी देना नहीं, जोर अभेद पर देना। अभेद मैंने मूल निश्चय वस्तु है उस पर जोर देना। तो ये जो शुरू से ही गुरुदेव जो कहते थे वही सिद्धांत अधिक खुल करके बाद में कहा, विशेष खुल करके कहा, क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान भी प्रतिदिन निर्मल होता जाता था और स्पष्ट हो जाता था, होता जाता था, तो बहुत खुल करके बहुत स्पष्ट आई बाद में, लेकिन मूल बात तो पहले से ही चालू है। क्योंकि अपना अनुभव तो पहले से जो है सो है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनुभव को कहने के लिए वाणी का योग जब होता है और ज्ञान का ऐसा विशेष निर्मलता होने से, वाणी का ऐसा योग होने से बात खुल करके बाहर आती है। पहले जो कम शब्द में आवे वो अधिक खुल करके स्पष्ट शब्द में आ जावे, दूसरे को समझ पड़े ऐसे। वो पोते बहु घूटता था ने, એટલે પછી એમાં જેને રસ પડે એ બધા સાથે જોડાઈ જાય। વક્તા જિસ અધ્યાત્મ રસ મેં જબ આતે હૈ વક્તા, તો શ્રોતા કો ભી નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સે યોગ્યતા વાલે શ્રોતા કો, જિસમે ઉસકો રસ હૈ રુચિ હૈ સુનને મેં, ઉસકો ભી એસા હી રસ આતા હૈ, જૈસે વક્તા કો રસ આતા હૈ એસા હી श्रोता को रस, वैसा ही रस उत्पन्न होता है। तो वक्ता अपना भाव में घूंटन करते हैं तो श्रोता को भी घूंटन आता है। ऐसा गुजराती आत्मधर्म में से लिया है। अब जो है समय सार प्रवचन भाग 5 पृष्ठ 352 और 353, पांचवा भाग का 352 और 53 में से गाथा 280 के जो प्रवचन है उसमें से ये हिंदी अनुवाद किया है। इवेंचर का लिखा हुआ है। वो पहले जो पांच भाग आया ना, वो वेंचर लिख लेते थे उन दिनों में प्रवचन सुन करके। नहीं, पांच भाग है, पांच भाग बार पढ़ा है वो। उस वक्त प्रवचन सुन करके घर पे आकर पूरा प्रवचन लिखते थे, उतनी धारणा थी कि सारा प्रवचन घर पे आके पूरा का पूरा लिख ले, ऐसी बात है। आत्मा द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है। ये जो अपरिणामी शब्द है वो उन दिनों में गुरुदेव के ये प्रवचन में आया है, ऐसा कहते हैं। यहाँ अपरिणामी तीन दफे बात आई है, एक पैराग्राफ में तीन दफे अपरिणामी शब्द का प्रयोग है। 2000 के साल में ये प्रवचन हुए हैं, ऐसे बहुत शुरू शुरू में ये बात चली है अपरिणामी। लेकिन जो पीछे से आए उनको पता नहीं चला, प्रवचन तो सबने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं गया कि पुस्तक तो अब भी मौजूद है और सब पढ़ते हैं मुमुक्षु। लेकिन अपरिणामी शब्द जब ये चर्चा में आने लगा सुगानी जी के मुख से, तो लोगों को ये नई बात लगी, गुरुदेव तो ऐसा नहीं कहते, गुरुदेव तो ऐसा नहीं कहते, हम कैसे मानेंगे। लेकिन गुरुदेव ने भी कहा है और शास्त्र में भी है, समय सार में है, गुरुदेव ने कहा भी है। लेकिन अपना ध्यान नहीं जाता तो कहते हैं गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए सुगानी जी कहे तो हम कैसे माने। ये बात हुई थी उन दिनों में, तो हमने निकाल करके रखा कि ये बात यहाँ है। हाँ, कुटस्थ का भी है, परिणामी का भी है, दोनों का है। आत्मा द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, अर्थात बहुत स्पष्ट है, द्रव्य दृष्टि से पुण्य पाप का विकार होने का सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। ऐसा तो कोई सामर्थ्य नहीं, गुण ही नहीं, सामर्थ्य मैंने शक्ति नहीं कि वो पुण्य और पाप का परिणाम करे। पर्याय दृष्टि से परिणामी है, पर्याय की मुख्यता लो, पर्याय की मुख्यता लेने में आवे पूरा द्रव्य में, पर्याय की मुख्यता से लियो तो द्रव्य परिणामी है। ये प्रमाण का विषय भूत है परिणामी। स्वभाव में शुद्ध पर्याय रूप भी परिणमता है, और जो शुद्ध परिणमन है वो स्वाभाविक परिणमन है, और ये स्वभाव के आश्रय से परिणमता है, और स्वभाव परिणमा ऐसा कहने में आता है। उस वक्त क्या कहते हैं कि जो आनंद था, आनंद गुण था, उसमें से आनंद की उत्पत्ति हुई, वो आनंद गुण की पर्याय है, ऐसा कहेंगे। तो ऐसे स्वभाव में शुद्ध परिणाम पर्याय रूप भी परिणमता है और अशुद्ध पर्याय रूप भी परिणमता है, और पर्याय में अशुद्धता भी होती है, आनंद की जगह दुख भी होता है। शुद्ध वस्तु दृष्टि से आत्मा अपरिणमन स्वरूप है, अर्थात कुटस्थ है। लिया के नहीं लिया, शुद्ध वस्तु दृष्टि से देखे तो आत्मा अपरिणमन स्वरूप है, अर्थात कुटस्थ है। लेकिन तद्दन कुटस्थ है, तद्दन मैंने पूरा प्रमाण का द्रव्य ले लेवे तो वो भी कुटस्थ है, ऐसा नहीं है। तद्दन कुटस्थ है ऐसा नहीं है। तद्दन तद्दन माइकान शब्द वाई प्रस, ठीक छे, काय मानो है। लेकिन तद्दन कुटस्थ है ऐसा नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से कुटस्थ है, किसी अपेक्षा से मैंने शुद्ध वस्तु दृष्टि से देखे यानी द्रव्य दृष्टि से देखे तो कुटस्थ है। और कथनचित किसी अपेक्षा से परिणामी भी है, प्रमाण का अपेक्षा से लेवे तो परिणामी भी है। बंध और मोक्ष पर्याय है, सो निमित्त की अपेक्षा रखने वाली पर्याय है। बंध में कर्म का संबंध है और मोक्ष में कर्म का क्षय क्षय है, दोनों में कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है। मोक्ष में कर्म का छूटना तो भी कर्म की अपेक्षा आई, और बंध में कर्म का संबंध होना उसमें भी कर्म की अपेक्षा आई। ऐसा बंध और मोक्ष पर्याय है, तो दोनों निमित्त की अपेक्षा रखने वाली पर्याय है, मैंने दोनों में कर्म का निमित्त पड़ता है, एक में सद्भाव का और एक में अभाव का, निमित्त तो दोनों को ही निमित्त कहते हैं। निरपेक्ष दृष्टि से आत्मा परिणामी है, आत्मा का मूल स्वरूप जो निरपेक्ष है उस दृष्टि से देखे तो आत्मा अपरिणामी है। आया ना, कितने दफे आया है? दूसरी दफे आया है, पहले कहा था कि अपरिणामी है, और अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है, वो पहले दफे आया या दूसरी दफे आया? निरपेक्ष दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है, है? हाँ, और अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है, और द्रव गुण पर्याय का भेद पाड़ने पर आत्मा में शुद्ध निरपेक्ष पर्याय है, इसलिए आत्मा परिणामी भी है। द्रव गुण और पर्याय का भेद पाड़ने पर, पूरा प्रमाण का विषय लेवे द्रव गुण पर्याय वाला, तो आत्मा में शुद्ध निरपेक्ष पर्याय है, इसलिए आत्मा तो शुद्ध पर्याय है, वो निरपेक्ष पर्याय है। निरपेक्ष पर्याय मैंने पर का अवलंबन नहीं लेते, इसलिए आत्मा परिणामी भी है, मैंने स्वतः परिणमन करता है, किसी के कारण से परिणाम नहीं करता। हाँ हाँ, पर्याय पर निरपेक्ष लेते थे, केम के परिणमन करवो ये स्वभाव है, स्वभाव निरपेक्ष है, इसलिए
पांच बार
है। अच्छा, छिल्ले आवे ना पाछा, इसलिए आत्मा परिणामी भी है। हाँ, सिद्ध भगवंत के अनंत गुण में भी परिणमन हो रहा है, वो निरपेक्ष पर्याय से, सिद्ध भगवंत के अनंत गुण में भी परिणमन हो रहा है, वो शुद्ध निरपेक्ष पर्याय हो गए, इसलिए आत्मा परिणामी है। सिद्ध भगवान परिणमता है तो आत्मा परिणामी है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है। अपरिणामी कितना घुटाया है, एक पैराग्राफ में पांच दफे आया। अब फिर वो शिकायत कैसे कि अपरिणामी गुरुदेव ने नहीं कहा, कितना जोर से कहा है, बहुत जोर से परिणामी कहा है।
परिणामी कहने में बांधा हुआ, कुटस्थ कहने में बांधा नहीं,
कुटस्थ का भी बांधा था, क्योंकि ये दोनों शब्द है वो वेदांत में सांख्य मत में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उनकी तो मान्यता वही है। हाँ, वहां तो पर्याय को मानते ही नहीं, और वस्तु को हमेशा कुटस्थ और अपरिणामी मानते हैं, तो ऐसे धारणा बिना परिचय भी ऐसा एक पूर्वग्रह हो गया था कि वेदांत जैसा निश्चयाभास की बात चल रही है, ऐसा गुरुदेव कहता था मुझे, अपने कई लोग उनको कहते थे कि वो वेदांत जैसी निश्चयाभास की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर बात करते हैं, निश्चयाभास नहीं है, लेकिन लोगों को पहचान नहीं थी, लोगों ने पहचाना नहीं, ऐसा बोलते थे। हाँ, लोगों को पहचान नहीं थी, पहचाना नहीं है उसको, ऐसा बोलते थे। और परिचय बिना तो पहचान आवे भी कहाँ से, परिचय करने को तो कोई आते नहीं थे।
एक प्रवचन में बुद्ध ने तो अमृत आचार्य की शैली से मेल जी की सुगंधी की शैली को तुलना किया।
हाँ, वैसे 320 में वो बता रहे हैं, 320 में लिया ने, 320 में जयसनाचार्य की टीका है, तो जयसनाचार्य ने पर्याय को कथनचित भिन्न कही, और 172 गाथा में 20वें बोल में पद्रव से नहीं आलिंगित ऐसी पर्याय सर्वथा भिन्न कही। तो कहें कि सुगानी जी भी सर्वथा भिन्न कहते थे और अमृत चंद्राचार्य भी सर्वथा भिन्न कहते हैं, जयसनाचार्य थोड़ा ढीला रखता है कि कथनचित भिन्न करता है, कहते हैं कि अपेक्षा से दोनों बात बराबर है, फिर भी उसमें अध्यात्म का जोर है, पर्याय सर्वथा भिन्न है उसमें अध्यात्म का जोर आता है और कथनचित भिन्न में इतना जोर नहीं आता, वो ज्ञान प्रधान बात है और ये श्रद्धान का जोर की प्रधानता दिखती है, ऐसी बात है, वो लिया है। ये तो सांख्य की बात लिखी है हमने, वो तो है कि वो पूज्य गुरुदेव के मुसानगढ़ में भी रात्रि चर्चा समय इसका स्पष्टीकरण हुआ था निष्क्रिय भाव का, और अपरिणामी ने बात है 338 में जो पहला पैराग्राफ में लिखो है, यहाँ पहुँचने पर आपका पत्र आया हुआ देखा, भगवान श्री जयसेन आचार्य की गाथा 338 की टीका में अपरिणामी संबंधित लाइनें आपने उद्धृत कर लिखी, उन्हें भाजकर बहुत ही प्रमोद हुआ, ये 338 ने बात है, अने त्या बहुत सरस बात चाली है। संख्यानुसार शिष्य अभिप्राय में निश्चय व्यवहार में आखे प्रमाण रूप अनेकांत स्वरूप द्रव्य को एकांते अपरिणामी समझकर जैनागम में भी शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय जीव को अपरिणामी कहा गया ऐसा कहता है, जिसका समाधान आचार्य देव ने किया है, परंतु व्यवहार निश्चय परिणामी है, शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय अपरिणामी है, इस बात को रखकर व्यवहार अंग नहीं समझने वाले शिष्य को परंतु शब्द मुखकर परिणमन रूप व्यवहार भी बताया है, 338 की बात है। फिर वो निष्क्रिय शब्द है वो 320 वाली बात है, 320 में अपरिणामी शब्द का प्रयोग नहीं है, निष्क्रिय शब्द का प्रयोग है। तो निष्क्रिय भाव और शब्द के लिए आपने आचार्य श्री की गाथा 320 की टीका वहाँ बताई थी, वो पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से सोनगढ़ में भी रात्रि चर्चा समय इसका स्पष्टीकरण हुआ था, तो पोतानी उपस्थिति में जे स्पष्टीकरण थयुं हतुं एनो आधार लिखो छे, ए वातनो संदर्भ आप्यो छे पत्रनी अंदर। ए आगम आधार बतायो छे, आगम माथी वात मळे छे, एम के अपरिणामीनी वात पण आगम माथी मळे छे अने निष्क्रियनी वात पण आगम माथी मळे छे। आगम का आधार मिले तो इससे बात ठोस हो जाती है कि अंतर में से निकली, पूर्वाचार्यो ने भी यही बात कही है, मेल खाती है, खाएगी खाएगी। हाँ, कभी कोई अभी सब आगम तो बहुत से विच्छेद गए हैं, तो कोई बात नहीं भी मिले आगम में तो वो आगम ही समझना चाहिए जिसके है, हाँ आगम है, वही आगम है, तो श्रीमद जी तो कहते हैं कि हमने जो बात लिखी है वो आगम में से मिलेगी, नहीं मिले तो उसको आगम समझना, ऐसा लिख दिया है कि हमारे शब्द को तुम आगम ही समझना। खुद तो कहते हैं कि मेरे शब्द को तुम आगम समझना, तो दूसरे लोग कहें कि हम नहीं माने तो उसके क्या चले। ज्ञानी की आज्ञा को नहीं मानते ऐसा। ये बात है।
वादिदेव जित मंदर भगवान।